हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कृषा युग के साथ हॉस्पिटल रूम में थी, जहाँ उसकी युग से थोड़ी बहस हो गई थी। युग ने कृषा को कमरे से बाहर जाने को कह दिया था। कृषा भी इस वक्त उसके पास नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा वहां अच्छी खासी सिक्योरिटी थी, मलिक और मीरा उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। कृषा वहां से कॉरिडोर को पार करके बाहर की तरफ जाने लगी कि तभी अचानक किसी रूम से एक आदमी बाहर निकाला और उसने कृषा के मुंह को बंद करके उसे कमरे में घसीट लिया। कृषा उससे बचने के लिए हाथ पैर मार रही थी, लेकिन उसने कृषा के मुंह को रुमाल से बंद किया था। उस पर क्लोरोफॉर्म लगे होने की वजह से कृषा बेहोश हो गई थी। कृषा के बेहोश होकर गिरते ही उस आदमी ने अपना मास्क उठाया और गहरी सांस लेकर छोड़ी। उसने कृषा की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हारे लौटने का इंतजार सिर्फ युग राणा ने ही नहीं किया कृषा सिंघानिया, राणा फैमिली का एक और शख्स तुम्हें तहे दिल से राणा फैमिली में वापस लाना चाहता था, और वो मैं हूँ, वरदान राणा। वो वरदान राणा था युग का चाचा, जिसे अंडरवर्ल्ड में सब वुल्फ के नाम से जानते थे। वरदान ने कृषा को वहीं पर छोड़ा और फिर हल्का सा दरवाज़ा खोलकर इधर उधर देखा तो उसे कोई नज़र नहीं आया था। वरदान ने अपना ब्लूटूथ ऑन किया और किसी को कॉल पर कहा, रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन यहाँ युग की सिक्योरिटी भी मौजूद है, गलती से भी किसी ने इसे मेरे साथ देख लिया तो वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमें इसे सेफली यहाँ से निकलना होगा। मैंने सारे इंतज़ाम कर लिए हैं, तुम रुको मैं अभी आती हूँ। सामने से एक लड़की की आवाज़ आई, वो वरदान की मैनेजर और राइट हैंड अंजलि थी। अंडरवर्ल्ड में वो शार्प शूटर के तौर पर काफ़ी फेमस थी। वरदान ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद वहाँ अंजलि आई। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 9 इंच के करीब थी, उम्र लगभग 30 साल। वो दिखने में दुबली पतली थी और उसके चेहरे का रंग हल्का गेरुआ था। अंडरवर्ल्ड में सब उसे कातिल हसीना कहते थे, दिखने में खूबसूरत लेकिन उतनी ही खतरनाक। अंजलि को देखते ही वरदान ने कहा, जल्दी इसे यहाँ से हटाना होगा। आप नर्वस हो रहे हो और मैंने कभी आपको इस तरह नहीं देखा। इतनी मुश्किल से ये लड़की हमारे हाथ लगी है, अगर आप इसी तरह घबराएंगे तो हम इसे खो देंगे और हमारे पास इसे खोने का ऑप्शन नहीं है, अंजलि ने सख्त आवाज में कहा, जिस पर वरदान ने हाँ में सिर हिला दिया। अंजलि के हाथ में एक बैग था, उसने उसे खोला। अंजलि अपने साथ बुर्का लेकर आई थी ताकि कृषा को उसे पहनाकर वहां से छुपाकर ले जा सके। अंजलि कृषा को बुर्का पहनाते हुए बोली, एक बार हम यहां से निकल गए तो उसके बाद कोई CCTV फुटेज चेक भी करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे और इस लड़की के जरिए हम सातों पड़ाव पर कब्जा कर लेंगे। ये इतना भी आसान नहीं रहने वाला है, युग हर बार इसके साथ था, इसका मतलब वहां के पासपोर्ट सिर्फ कृषा से ही नहीं, युग के साथ होने पर ही अनलॉक होंगे, वरदान ने सिर हिलाकर कहा। वो कॉन्फिडेंट जरूर था, लेकिन साथ ही युग की क्या पावर थी से अच्छे से जानता था, इस वजह से उसे घबराहट भी हो रही थी। वहीं अंजलि के फेस पर कॉन्फिडेंस स्माइल थी, वो उसी लहजे में बोली, आप इस वक्त अंडरवर्ल्ड की शार्प शूटर के सामने खड़े हैं, आप जानते हैं मेरा हिडन टैलेंट क्या है, मैं किसी भी चीज को हैक कर सकती हूँ, हमें बस लोकेशन का पता करना है और साथ में इस लड़की को लेकर जाना है, बाकी काम मैं कर दूंगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। आप बस दो चीजों की तैयारी कीजिए, एक माफिया किंग बनने की और दूसरा मुझे क्वीन बनाने की, बोलते हुए अंजलि ने आई विंक की। वरदान की कॉन्फिडेंस और इतनी पावरफुल होने के पीछे अंजलि का ही हाथ था। वरदान से बात करते हुए अंजलि ने कृषा को बुर्का पहना दिया था और फिर उसने खुद भी एक बुर्का पहना। अंजलि ने अपना और कृषा का चेहरा कवर कर लिया था और फिर उसे कमर से इस तरह पकड़ा जैसे वो बीमार हो। कमरे से बाहर निकलने से पहले अंजलि ने कहा, उन्हें पता चल ही जाएगा कि ये किडनैप हुई है, बस इस कमरे से बाहर निकलने से पहले मास्क लगा लीजिएगा। वरदान ने अंजलि की बात पर हामी भरी और वहां से बाहर निकलने से पहले उसने अंजलि के होठों पर हल्का सा किस किया। अंजलि उसके बाद कृषा को लेकर वहां से हॉस्पिटल से बाहर निकली और फिर एक ऑटो में जाकर बैठ गई थी, वो ऑटो उन्हीं का था। दूसरी तरफ युग को लेटे हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे और वो सोकर उठ चुका था। उसने उठकर इधर उधर देखा तो कृषा कहीं भी नजर नहीं आई। युग को यही लगा कि उसने कृषा को बाहर जाने का कहा, उसके बाद से वो नाराज होकर रूम में नहीं आई होगी। युग कमरे में देखते हुए आईज रोल करके बोला, हाँ अब यही बाकी रह गया है, गलतियां वो करे और मैं जाकर उसे मना कर लेकर आऊं। ऐसे तो हर बात पर बड़ा जिद करती है और अब एक बार कहते ही बाहर चली गई, इतनी ओबीडियंट कब से हो गई हो तुम कृष, बोलते हुए युग उठा और उसने जैसे तैसे करके अपना शर्ट पहना। युग कमरे से बाहर निकाला तो उसे देखकर सभी गार्ड्स ने नजरें नीचे कर ली। उसने उनसे तेज आवाज में पूछा, मलिक कहाँ है? सर वो यहीं पर बाहर के एरिया में है, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ, आप रेस्ट कीजिए, उनमें से एक गार्ड ने जवाब दिया। वो वहां से जाने को हुआ तभी युग बोला, रहने दो मैं खुद ही बाहर जा रहा हूँ, आई नीड सम फ्रेश एयर। युग वहां से बाहर की तरफ गया तो उसे मलिक और मीरा दिखाई दिए। युग को यही लगा था कि कृषा उनके पास ही होगी। उसने मलिक के पास जाकर हैरानी से पूछा, कृष कहाँ है मलिक?
मुझे नहीं पता, सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया था कि वो किसी काम से कमरे से बाहर गई थी। अब तक आई नहीं है क्या?
मलिक ने जवाब दिया। इसी के साथ उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो जल्दी से बोला, नहीं, आदित्य सिंघानिया यहां तक नहीं आएगा। अगर तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक बार फिर कृष गायब हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, युग ने सख्त लहजे में कहा और फिर कृषा को देखने के लिए वहां के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में चला गया। हॉस्पिटल की सीसीटीवी कंट्रोल रूम में किसी बाहर वाले को आने की इजाजत नहीं थी। युग, मलिक और उनके साथ कुछ गार्ड्स को वहां देखकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से खड़े हो गए। उनके पास में भी गन्स थी और उनमें से एक तेज आवाज में बोला, यहां क्या कर रहे हैं आप लोग? जल्दी से यहां से निकलिए वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। उसके पुलिस की धमकी देने पर युग ने उसके पैर के साइड में शूट कर दिया। साइलेंसर लगे होने की वजह से आवाज नहीं आई थी। उसे युग ने इशारे से कैमरा बंद करने को कहा और फिर सिक्योरिटी गार्ड के पास गया। उसने उसका चेहरा पकड़कर दबाते हुए कहा, इंसान को दिमाग इसलिए दिया जाता है ताकि वो सोच समझकर बोले। अगर एक भी शब्द बेफिजूल का बोला तो अगली गोली तुम दोनों के सीने पर चलेगी। उससे निपटने के बाद युग दूसरे गार्ड से बोला, मुझे वीआईपी एरिया की 2 घंटे पुरानी फुटेज देखनी है। बोलते हुए वो मलिक की तरफ मुड़कर बोला, इन दोनों से इनके अकाउंट नंबर ले लेना और उनमें इतने पैसे डाल देना कि ये जिंदगी भर अपना मुंह ना खोले। युग के कहते ही तुरंत सिक्योरिटी गार्ड ने फुटेज प्ले कर दी थी। युग ने कृषा को कमरे से बाहर निकलते देखा और उसके बाद वो आगे जा रही थी। किसी ने उसे पकड़कर खींच लिया था। लगभग 20 से 25 मिनट बाद इस कमरे से 2 लड़कियां बुरके में निकली थी। युग के लिए ये सब नया नहीं था, इसलिए वो तुरंत समझ गया कि किसी ने कृषा को किडनैप कर लिया है। गुस्से में युग ने अपना हाथ स्क्रीन पर पंच मारा जिससे वो स्क्रीन उसी वक्त टूट गई थी।
नींद से जागते ही युग ने सबसे पहले कृषा को ढूंढा। वो कमरे में नहीं दिखाई दी तो युग ने हॉस्पिटल के सीसीटीवी कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लिया था और वहां से उन्हें पता चला कृषा को किसी ने किडनैप कर लिया है। युग इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। उसने मलिक की तरफ देखा। एक बार फिर मलिक की ही बेवकूफी की वजह से कृषा फिर से किडनैप हो चुकी थी। युग मलिक के पास बढ़ा और उसकी कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी वजह से आज मैंने दूसरी बार कृष को खोया है। पता नहीं क्यों मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता हूं, जबकि तुम्हारी वजह से मुझे उससे अलग होना पड़ा था। अगर उसे कुछ हुआ तो आई स्वेयर मैं सबसे पहले तुम्हारी जान लूंगा। मलिक ने जवाब में कोई सफाई नहीं दी। उसकी आंखें नम हो रही थीं। युग सिर्फ उसका बॉस ही नहीं था, उसके लिए काफी कुछ था। और कृषा की पिछली बार किडनैप होने के बाद उसने युग को तड़पते हुए देखा था। युग को जितना गुस्सा मलिक पर आ रहा था उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मलिक को खुद पर आ रहा था। मुझे लगा वो आपके साथ है, मैं कोई सफाई नहीं दूंगा क्योंकि गलती मेरी ही है। मैं अभी आदित्य सिंघानिया से बात करता हूँ, मलिक बोला और इस वक्त आदित्य सिंघानिया को कॉल किया। आदित्य के इस वक्त फ्लाइट में होने की वजह से उनका नंबर बन जा रहा था। युग गुस्से में गहरी सांस ले रहा था। वो सिर हिलाकर बोला, अब तक तो वो उसे लेकर दूर भी निकल गया है और उसका नंबर बंद इसीलिए आ रहा है। अभी इसी वक्त लंदन चलो, अब अर्जुन सिंघानिया और सारा चौधरी ही कृषा को वापस ला सकते हैं। इस बार आदित्य सिंघानिया ने कुछ भी इधर उधर किया तो मैं उन दोनों को गोली मार दूंगा। युग और मलिक को यही लग रहा था कि कृषा को आदित्य सिंघानिया ने किडनैप किया होगा। उनके पास आदित्य पर शक करने की वजह भी थी। कृषा ने आदित्य को गोली मारी थी, उसके बाद से वो काफी गुस्सा भी थे। मलिक ने इस वक्त एक प्राइवेट जेट हायर किया और युग के साथ लंदन जाने के लिए निकल गया। उनके साथ मीरा भी थी जो कृषा के किडनैप होने से परेशान थी। आदित्य और अमृता लंदन पहुंच चुके थे। वहां आते ही उन्होंने सबसे पहले मिस्टर हर्षवर्धन राणा और हरलीन के साथ मीटिंग फिक्स की और इस वक्त वो उनसे मिलने के लिए लंदन में युग के विला में आए हुए थे। उनकी मीटिंग युग के विला के बाहर की तरफ बने एक रेस्टोरेंट में हो रही थी। फ्रेंडली मीटिंग होने की वजह से उन्होंने रेस्टोरेंट में मीटिंग करना सही समझा। आदित्य के पैर में गोली लगे होने की वजह से वो लड़खड़ा कर चल रहे थे और उन्हें एक छड़ी का सहारा लेना पड़ रहा था। उनके पैर को देखते ही हर्षवर्धन ने तुरंत पूछा, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, ये कैसे हुआ? बहुत लंबी कहानी है, बस यूं समझ लो किसी अपने ने ही चोटती है, आदित्य ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात हरलीन और हर्षवर्धन को समझ नहीं आई। वो सवालिया नजरों से उनकी तरफ देख रहे थे। तभी अमृता ने उन्हें बताते हुए कहा, कृषा और युग से हमारी मुठभेड़ हुई थी और कृषा ने उनके पैर पर गोली मारी थी। अमृता की बात सुनकर हरलीन और हर्षवर्धन दोनों को ही हैरानी हुई। वो कुछ कहते उससे पहले आदित्य ने कहा, गलती हम दोनों की तरफ से हुई है, खासकर हमारी तरफ से ज्यादा ही हुई होगी, पर अब मुझे इस ओर नहीं खींचना है। मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ। अपने पोते से कहो कि मुझे कृषा और उसका रिश्ता मंजूर है, बदले में उन दोनों को फिर से शादी करनी होगी। मुझे अपनी पोती की शादी अटेंड करनी है, उसे आशीर्वाद देना है। हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए उनकी बात पर हामी भरी। वहीं हरलीन भी खुश हो रही थी। देर से ही सही मिस्टर सिंघानिया ने युग और कृषा को एक्सेप्ट कर लिया था। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर किसी के क्लैपिंग की आवाज आई। वो युग था जो लंदन पहुंच चुका था। वहां आते ही उसे आदित्य और अमृता के वहां आने की बात पता चली तो वो सीधे रेस्टोरेंट एरिया में आ गए।
युग तेज कदमों से चलकर अंदर आया और आदित्य सिंघानिया की तरफ देखकर सर्द लहजे में कहा, आप तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं, आशीर्वाद देना है आपको। सच कहूं तो इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो आप कि आपको माफिया के बजाय बॉलीवुड या हॉलीवुड में होना चाहिए था। एक दो अवार्ड तो आपके हिस्से में आ ही जाते मिस्टर सिंघानिया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम यहां आ गए मतलब कृषा भी तुम्हारे साथ होगी? मुझे उससे बात करनी है, उसे बुलाकर लाओ, आदित्य सिंघानिया ने कहा। वो कृषा के किडनैप होने की बात से पूरी तरह से अनजान थे। युग ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, आप जैसे जैसे बोल रहे हैं मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, कृष कहाँ है? मुझे उसे वापस लौटा दीजिए, वरना इस बार आपके घर पर अर्जुन और सारा की लाश पहुंचेगी। युग की बात सुनकर अमृता खड़ी हुई और वो हैरानी से बोली, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हमें नहीं पता कृषा कहाँ है, और वो तुम्हारे साथ ही तो थी। तुम्हें याद हो तो उसने सबके सामने तुम्हें चुना था और मिस्टर सिंघानिया को गोली मारी थी। तुम्हें लगता है उसके बाद वो हमारे साथ होगी? और अगर हमारे पास वो होती तो हम यहाँ बैठकर सब कुछ सही करने की बातें नहीं कर रहे होते। अमृता ने काफी लॉजिकली अपने पॉइंट को रखा था। उनकी बातों से युग को इतना तो साफ हो गया था कि कृषा उनके पास नहीं है, पर अब हैरानी की बात ये थी कि कृषा को कौन किडनैप कर सकता था। वहीं कृषा के किडनैप होने की बात सुनकर हरलीन और हर्षवर्धन घबरा गए थे। कहाँ है वो? तुम्हारे साथ गई थी ना, और तुम फिर से उसे खोकर आ गए, हरलीन ने युग के पास आकर पूछा। युग ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मलिक की तरफ देखकर बोला, हमारा कोई एक दुश्मन नहीं है। उस पार्टी में मैंने अनाउंस किया था कि जो भी इल्लीगल काम कर रहा है उन सबके कामों को बंद करवा दिया जाए। हमारे बहुत से दुश्मन हैं, उनमें से ही किसी ने कृष को किडनैप किया होगा। युग को यही लगा कि कृषा के किडनैप होने की वजह वो था। तभी आदित्य सिंघानिया ने नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं, तुम्हारे दुश्मनों ने उसे किडनैप नहीं किया होगा। वो माफिया प्रिंसेस है, आज भी उन सातों पड़ावों की चाबी। इस माफिया की दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो माफिया किंग ना बनना चाहे। तुम उसे इस तरह अकेला छोड़ भी कैसे सकते हो? मुझे लगा था वो तुम्हारे साथ सेफ रहेगी, इसीलिए मैं समझौता करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तुम उसे ठीक से नहीं संभाल पाए। तुमने भी उसे खो दिया एक बार फिर। अगर आपको उसे सुरक्षित ही रखना था तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी उसके सिर पर नहीं डालनी चाहिए थी। आगे से मुझे लेक्चर मत दीजिएगा, वो इस दुनिया की प्रिंसेस है और उसे उस हिसाब से डील करना आना चाहिए, युग ने कोल्ड वॉइस में कहा और आदित्य का मुंह बंद करवा दिया। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी युग के पास एक वीडियो आया। उसने उसे प्ले करके देखा। उस वीडियो में कृषा एक सुनसान इलाके में थी। उस जगह को देखकर लग रहा था कि वो काफी ठंडा इलाका रहा होगा। उस ठंड में भी कृषा ने सिर्फ जरूरत के ही कपड़े पहने थे और उसके हाथ ऊपर की तरफ बंधे हुए थे। कृषा इस वक्त बेहोश थी। वीडियो देखने के बाद हरलीन डर से कांपने लगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हें उसे बचाना होगा युग, वो बहुत बड़े खतरे में है, हरलीन आंखों में आंसू लिए हुए युग से बोली। युग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तेज कदमों से चलते हुए वहां से चला गया।